Hare Krishna, this lecture on the Jaipur Yatra given at Kanak Vrindavan on 1st April 2016 by myself Prashant Mukund Das. Gandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Gurube Nama Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swabda Kantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Pad Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishnu Shakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kant Radha Kant Namastute Tapt Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vashya Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shri Shri Radha Madhav Bhagwan Ki Jai Shri Shri Natwar Krishna Bhagwan Ki Jai Kanak Vrindavan Ki Jai Patita Pavan Srila Prabhupada Ki Jai Namom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamit Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Aap sabka swagat hai वृंदावन जयपुर वृंदावन में है तो हम लोग सब वृंदावन जाते हैं लेकिन जयपुर भी वृंदावन का एक हिस्सा है हमें मालूम नहीं है और असलियत में यही वृंदावन है तो जो जयपुर है हमने आज बताया था बस में भी जयपुर का मतलब है जहां पर विजय होती है तो भक्तों की भी जय होती है भगवान की भी जय होती है तो यहां आने वाले सभी की जय होती है जैसे भगवद गीता कहती है जयस्तु पांडु पुत्राणाम पांडु पुत्रों की जय होती है क्योंकि उनके पास कौन है कृष्ण है यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मतिर्ममः भगवद गीता के अंत में अर्जुन इसी बात पे संजय इस बात के निर्णय पे पहुंचते हैं कि जीत उसी की होती है जिसके पास कृष्ण होते हैं है ना तो इसीलिए तो राजा जयसिंह हैं जिनके नाम से ये स्थान जयपुर कहलाता है तो जयपुर में राधा मदन मोहन राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ तीनों की ही जो आरती अर्चना पूजा होती थी वो इसी स्थान पे होती थी जिसको पुराना गोविंद मंदिर भी कहते हैं इसको कनक वृंदावन को कनक के कई अर्थ होते हैं कनक का एक अर्थ है सोना है ना कनक का अर्थ है गेहूं और एक कनक का अर्थ है ऐसा जंगल बाग बगीचा तो इसलिए इसको कनक बोला जाता है क्योंकि एक एक प्रकार से रास लीला की प्रतिभू मूर्ति है रास लीला जैसे भगवान के वृंदावन मुख्य वृंदावन जो है भांडीर वन गोवर्धन और वृंदावन, ये 40 किलोमीटर के एरिया को मुख्य वृंदावन कहते हैं। तो उसी तरह से वृंदावन में राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाएं होती हैं, तो कनक वृंदावन भी गुह्यतम लीलाओं का हिस्सा है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि घूमने फिरने का, फोटोग्राफ खिंचाने का एरिया है, वो तो है, लेकिन इसके साथ में ये भगवान की रास स्थली भी है। तो जो राधा माधव हैं, ये कौन है, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि जब हम अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को भूल करके इस स्थान पे आते हैं, जैसे घर की ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, किसी को ऑफिस से ऑफ लिया है, किसी ने बोला ही नहीं है कि मैं ऑफिस छुट्टी पर हूँ, कोई भाग भाग के आया है तुरंत, अरे बस जा रही है मुझे भी जाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्यों आए हैं यहाँ पर? फोटोग्राफ्स के लिए, फेसबुक पे फोटोज अपलोड करने के लिए, व्हाट्सएप पे फोटोज भेजने के लिए, सबको बताने के लिए, अरे मैं भी जयपुर होके आया हूँ, किस लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, शॉपिंग के लिए आए हैं, किस लिए आए यहाँ पर, मकसद क्या है?
भगवान का दर्शन,
भगवान का दर्शन।
तो हम आए यहाँ पर ताकि हमारे आध्यात्मिक जो शुद्धता है वो हो हमारी, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग, तो हमें इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाना चाहिए इस समय। भक्तों का संग, भक्तों से कथा श्रवण करना बहुत ज्यादा, और अपनी आत्मा अपनी चेतना को जितना शुद्ध कर सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर उतना प्रयास करिए। वो चीज जो वृंदावन में अभी लीला स्थलियां हैं वृंदावन के, लेकिन जो गुह्यतम वृंदावन है, जो वहाँ की मूर्तियां हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं, है ना। तो हम सब यहाँ पर भगवान के धाम में आए हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो दो चीजें मुख्यतः लोगों को शुद्ध करती हैं, एक है भगवान का हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम, और दूसरी है भगवान की कथा, वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में हमारी ज्यादा से ज्यादा रुचि होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है, अगर आप देखें तो पीछे पहाड़ है जो कि अरावली घाटी है, अरावली घाटी, लेकिन देखने में ये गोवर्धन पर्वत जैसा नजर आता है। और यहाँ पर जो बगीचे हैं ये सारे वृंदावन का दृश्य दिखाते हैं, और यहाँ पर राधा माधव भी विराजमान है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक व्यक्ति कष्ट नष्ट कर सकता है, जैसे अभी आदि नष्ट कर रहा है इसको बीच में बोल बोल के। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति लेट होता है, या कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, या व्यक्ति क्रिटिसिज्म करता है, तो इन चीजों से पूरी यात्रा खराब हो जाती है। तो हमारी यात्रा में हम सबको विनम्रता पूर्वक आध्यात्मिक प्रगति करनी है, आध्यात्मिक चीजों को ग्रहण करना है, और अपनी शुद्धता करनी है एज मच एज पॉसिबल। और प्रयास करिए, शॉपिंग मत करिए, शॉपिंग
मत करिए।
तो यहाँ पर शॉपिंग क्या करने आए हम, आध्यात्मिक शॉपिंग। आप सोचिए, अरे जो पोलका डॉट्स की चुनरी की साड़ी है वो तो मिलती नहीं है दिल्ली में, अरे सब कुछ मिलता है सरोजिनी नगर में, कनॉट प्लेस में, है ना। तो उसके लिए हम नहीं आए जयपुर, हम जयपुर आए ताकि हम यहाँ के विग्रहों को अपने हृदय में स्थापित कर सके, जिन विग्रहों के लिए एक एक गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है ना। आप सोचिए, ऐसे विग्रहों के लिए दर्शन करने, उनकी कथा को अपने हृदय में उतारने के लिए आए हैं, या फिर चुनरी की साड़ी खरीदने, पगड़ी खरीदने, मिठाई खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। वो तो हम अकेले भी आ सकते हैं, 300 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कार लेके आ जाएंगे। भक्तों के संग में आए हैं तो इसका बहुत से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु का लव मात्र संग, तो इतने अच्छे अच्छे साधु हैं हमारे साथ, राजकुमार प्रभु हैं, हिज ग्रेस लीलाकांत प्रभु हैं, हिज ग्रेस परम पुरुष गोकुलेश प्रभु हैं, चेतराम प्रभु जी हैं, और सभी आप सभी सुंदर भक्त। तो आप सबके एक दूसरे का हम सबको क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए इन लोगों का, है ना। इन लोगों से कथा सुने, इन लोगों के जीवन के एक्सपीरियंसेस पूछे, और जो अपने को भक्त मानता है उसका कर्तव्य है पड़ोसी को भक्त बनाने का प्रयास करे, अगर वो भक्त नहीं है, और अगर वो भक्त है तो आप अपने को भक्त बनाने का प्रयास करिए उसके संग से। ऐसा ना करें वो भी भक्ति छोड़ दे और आप भी, और फिर गप्पों में लगे रहे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें यहाँ पर। तो ये जो जगह है, यहाँ पर आमेर फोर्ट है यहाँ पर सामने राजा जय सिंह का, और एक है यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट, और एक है जयगढ़ फोर्ट। तो 3 किले हैं यहाँ पर, लेकिन इन किलों के अंदर तीनों विग्रह थे, मदन मोहन, गोपीनाथ और राधा माधव। गोपीनाथ गोविंद देव और राधा माधव, मदन मोहन जी तो करौली में है जिनका हम कल दर्शन करेंगे। तो ये जो स्थान है ये सवाई मानसिंह राजा सवाई जयसिंह महाराज का था, राजा सवाई जयसिंह महाराज। तो जो राजा जयसिंह थे ये आज से तकरीबन 275 साल पहले यहाँ पर इन्होंने मथुरा जैसी स्थली बताने का प्रयास किया और सारी जगहों को यहाँ पर कनक वृंदावन नाम देके स्थापित किया। कनक जो है एक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो राजा सवाई जयसिंह थे उनकी पत्नी का नाम था कनक दे, एक उनकी बरानी थी उसका नाम था कनक दे, तो कनक दे का ये महल था। तो राजा जो थे ऊपर आमेर फोर्ट पे रहते थे और उनकी बरानी रहती थी यहाँ कनक दे, उसके नाम से ये कनक वृंदावन। जैसे हम भी अपने घर का नाम रख लेते हैं प्रभुपाद कुटीर, सुदामा कुटीर, ऐसे इसका नाम रख दिया उन्होंने कनक वृंदावन। हाँ, लेकिन वो चाहते थे यहाँ की स्थली ऐसी लगे कि हाँ सच में रासलीला होती है यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक फाउंटेन गार्डन भी बनाया सुंदर सा, कनक गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे रात को म्यूजिकल फाउंटेन होता है और ये बहुत ही मटेरियल लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है शूटिंग करने के लिए। जैसे अभी माता जी बोल रही थी एक यहाँ की सीनरी कितनी अच्छी है, तो एक फिल्म बनी थी लम्हे 1991 में, है ना, उस फिल्म की शूटिंग इसी स्थान पे हुई है। अब सबको लगा अच्छा राधा माधव जयदेव गोस्वामी को किसी को लम्हे की शूटिंग हुई थी। हाँ अच्छा, आंखों के रोशनी से पता चल रहा है कि हम कितने भक्त हैं अभी। ठीक है, तो जो श्री राधा माधव परिसर भी बोलते हैं स्थान को, जयदेव गोस्वामी तकरीबन 450 साल पहले 1560 में जो ये 4 फीट ऊंचे राधा माधव आपने दर्शन किए उसमें राधा रानी ब्रास की हैं और कृष्णा मार्बल के हैं, ब्लैक मार्बल, इनकी हाइट है 4 फीट, और 1560 में तकरीबन 450 साल पहले इस स्थान पे विराजमान हुए थे। लेकिन ये कनक वृंदावन बना 275 साल पहले, 275 years back, हाँ 450 साल, 450 years पहले वृंदावन से ये जो है डीटीज यहाँ आ गए थे इस स्थान में। तो 450 साल से इसी स्थान पे इनका, हाँ वो सारा मैं बता रहा हूँ आपको। तो 18th century में, और ये जो अभी आपने ऊपर दर्शन किया राधा नटवर कृष्ण का, ये जो है राजा सवाई जयसिंह की बहन थी, उनका नाम था अमर कौर। तो अमर कौर जो थी उनकी बहन, उनके लिए उन्होंने नटवर कृष्ण डीटीज की अलग से स्थापना करी, जैसे हम अपने घर में अपने पर्सनल डीटीज रखते हैं। तो ये भी 18th century मतलब 18वीं शताब्दी के समय की बात है, और इस मंदिर को जुगल किशोर मंदिर भी कहते हैं या फिर नटवर कृष्ण मंदिर कहते हैं। माधव का क्या अर्थ होता है कौन बताएंगे? माधव लक्ष्मी जी के पति हैं। तो राधा माधव का दर्शन करने से जो लोग सोचते हैं हमें लक्ष्मी नहीं मिलती है, उन्हें लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, लेकिन भक्त होता है वो लक्ष्मी के लिए मना कर देता है, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। हाँ, जैसे एक बार एक बच्चा था वो कुछ सामान लेने के लिए घर में ऊपर चढ़ा, जैसे चढ़ते हैं कुर्सी रख के, और उसका पांव स्लिप हो गया, वो गिर पड़ा। जब गिरा तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई, उसको गले लगाया, बोली बेटा रो मत, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, लो लड्डू खाओ। तो लड्डू खाकर वो खुश हो गया, माँ को गले लगाया। दूसरे दिन सोचा गिरने से लड्डू मिलता है, तो दूसरे दिन जानबूझ के गिर गया और रोने लगा, माँ मैं गिर गया। तो माँ जो आई नहीं, तो गया कमरे में, देखा माँ नहीं है, किचन में गया, माँ का कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी, बोली माँ माँ, पल्लू पकड़ के बोला कल तो आई थी, आज क्यों नहीं आई? तो माँ बोली कि बेटा कल तू मेरे लिए रो रहा था और आज तू लड्डू के लिए रो रहा था। तो हम जब तक लड्डू के लिए रोते रहेंगे भगवान नहीं आएंगे, हमें भगवान के लिए रोना पड़ेगा। आप प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्ण ऐसे करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, तो वैसे हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो एक बार बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे।
तो ये चैतन्य महाप्रभु जो थे उनसे भी पूर्व 300 साल पहले जयदेव गोस्वामी का प्रकट होता है। 300 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, हाँ तकरीबन 800 साल पहले चैतन्य महाप्रभु से पहले जयदेव गोस्वामी केंदुबिल्व नाम का एक स्थान था बंगाल में, केंदुबिल्व उस स्थान में रहते थे, और उनके पास एक गंगा नदी बहती थी। जैसे गंगा के कई जगह अलग नाम है, कालिंदी नहीं अलकनंदा मंदाकिनी और भी कई नामों से, भगीरथी और भी कई नामों से बुलाते हैं। तो इसी तरह से जहाँ केंदुबिल्व स्थान में अजया नाम से इस नदी को पुकारा जाता, अजय अजय नदी बोलते थे, अजय है ना, क्योंकि सदाई जय होती है गंगा में नहाने वालों की, स्नान करने वालों की। तो वो वहां पर रहते थे, और वहां एक स्थान था काशेश्वर मंदिर शिव जी का। तो शिव जी के मंदिर में वो स्थान पे बैठ के भजन किया करते थे। सनातन गोस्वामी भी जब वृंदावन आए तो उन्होंने चकलेश्वर महादेव और वनखंडी महादेव पर बैठकर दर्शन किया, भजन किया। और शिव जी जो होते हैं वो हर एक धाम के द्वारपाल होते हैं। हमने आज दोनों बसों में चर्चा की, लेकिन फिर भी भक्त कह रहे थे प्रभु जी दोबारा बताइएगा। तो मथुरा जो धाम है वहां पे उसके द्वारपाल हैं कौन? भूतेश्वर महादेव। और वृंदावन जो है उसके जो अधिष्ठात्री द्वारपाल है वो है गोपेश्वर महादेव। गोवर्धन स्थान के हैं वनखंडी महादेव। और जयपुर जो स्थान है यहाँ के हैं तारकेश्वर महादेव। और भुवनेश्वर जो है स्थान जहाँ पर जगन्नाथ जी रहते हैं वहाँ पर है लिंगराज। तो इस तरह से लिंगराज जो शिव है, तो ऐसे हर जगह शिव जी आपको प्राप्त होंगे। तो ये भी जो भक्त थे जयदेव गोस्वामी केंदुबल्व में कशेश्वर मंदिर के अंदर बैठकर प्रार्थना करते थे। कुशेश्वर मंदिर था। तो एक बार लक्ष्मण सेन नाम के एक राजा थे जो बंगाल में रहते थे। उनको पता चला कि इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं करी हैं 10 अवतार स्रोत की। तो इन्होंने 10 अवतार भगवान के लिखे हैं। हाँ, जयदेव गोस्वामी तो उसमें वो गाते हैं, केशव धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। फिर दूसरा गाते हैं, केशव धृता कौन सा, हाँ वरा शरीरा नहीं, दूसरा कौन सा है, हाँ केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। और फिर तीसरा, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये इस तरह से उन्होंने 10 अवतार भगवान के मुख्य अवतार हैं उनका वर्णन किया। तो ये सुनकर लक्ष्मण सेन जो थे उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए, हमारे राज्य में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उनको बुला के लेके आओ। तो उनके एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था गोवर्धन आचार्य। तो गोवर्धन आचार्य आए और उन्होंने कहा कि राजा आपको बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप हमारे मायापुर स्थान में आए और वहां पर राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में, जैसे तानसेन राजा अकबर का कवि गायक था, उन्होंने भी स्वामी हरिदास जो कि बांके बिहारी मूर्ति की पूजा करते थे उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जो भक्त होते हैं ना उनको राज और बड़े पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे नहीं लगते। सच बात तो ये है, उनको उनका दर्शन तक लेना अच्छा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े लोगों को देखना मना कर दिया था। राजा कौन से थे जिनको देखने से मना कर दिया था चैतन्य महाप्रभु ने? प्रताप रुद्र देव जो है चाहते थे महाप्रभु का दर्शन पाना, लेकिन महाप्रभु कहते थे नो, आई डोंट वांट टू मीट दिस मटेरियल मैन। राज्य लोग जो थे उनको देखना नहीं चाहते। अभी भक्त जो है वो बड़े खुश होते हैं, पता है हमारी जान पहचान है वो पैसे वाले व्यक्ति से, तो हमारी गड़बड़ी है क्योंकि एक्चुअली हम अभी भौतिकता से जुड़े हुए हैं। जब सच्चे हृदय से भगवान से जुड़ेंगे ना तो हमको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी किसी पैसे वाले व्यक्ति को देखें भी हम। हाँ, क्योंकि जो हाँ तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो अलग विलक्षण होते हैं, बिल्कुल अलग। जैसे दो भक्त थे भगवान के, राका और बाका, जानते हैं आप उनकी कथा राका बाका। तो राका बाका भगवान के ऐसे भक्त हुए कि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती थी धन को पाने की या किसी भी चीज की। वो कैसे अपना गुजारा करते थे, पेड़ की लकड़ी काटने जाते थे और पेड़ की लकड़ी काट के उसको बेच के जो धन आता था उसी से अपना गुजारा करते थे। कभी कभी लकड़ी कटी हुई मिल जाती थी, टूटी हुई है, तो उठाते नहीं थे। बोलते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, राका हस्बैंड बांका वाइफ थी, बोलते थे कि अरे किसी ने मेहनत करके लकड़ी काटी होगी और बेचारा उठा नहीं पाया होगा तो छूट गया, हम किसी की मेहनत क्यों खराब करें। हमें तो किसी का पर्स मिलता तो सोचते हैं चलो किसी की मेहनत काम आई। राका बाका बहुत अमेजिंग भक्त थे भगवान के। तो एक दिन राका बाका जा रहे थे तो भगवान ने सोचा, लक्ष्मी जी कहने लगी माधव से, माधव ये जो राका बाका है इतने दिन से आपका भजन करते हैं, इनको तुम कुछ लक्ष्मी क्यों नहीं देते, ये तो राधा माधव के विग्रह का दर्शन करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इनको देना भी चाहता हूं ना तो ये लेंगे नहीं, देना भी चाहूंगा तो ये लेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, राका बाका एक दिन चल रहे थे तो माधव भगवान ने एक सोने के एक किलो की पूरी ब्रिक ईंट, सोने की ईंट राका के सामने डाल दी उसके चरणों में, और बांका जो वाइफ थी वो पीछे पीछे चल रही थी। राका की टक्कर हुई, वो गिर पड़ा, देखा तो सोने की ईंट, तो बोला ओहो हो धन से टक्कर हो गई, आज का तो दिन ही खराब हो गया, सोने की ईंट से टक्कर हो गई, दिन ही खराब हो गया, हमारी टक्कर हुई हम कहेंगे आज तो दिन बन गया, जय राधा माधव जय राधा माधव। हाँ आज तो दिन ही खराब हो गया, क्यों, क्योंकि आज सोने की ईंट से टक्कर हो गई। तो सोचे कि अरे पत्नियां जो होती है ना स्त्रियां सॉफ्ट हार्टेड होती है, सोने के प्रति थोड़ा ज्यादा होती है, तो ज्वेलरी बनाने के लिए बोल देगी कि बहुत दिन हो गए गरीबी में, अरे ले चलो ना एक भगवान की इच्छा से मिली है। लेकिन इस बात को बचाने के लिए राका ने उसको मिट्टी में गाड़ना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। इतने में बांका आ गए, क्या कर रहे हैं, क्या दबा रहे हैं। तो वो बोल नहीं पाया कि मैं क्या दबा रहा हूँ, क्या छुपा रहा हूँ। तो बोला अरे कुछ नहीं, बस एक सोने की ईंट मिली थी एक किलो की, उसे दबा रहा था मिट्टी में। कह रही है कि अच्छा पर क्यों दबा रहे थे। तो उसने कहा अरे सोने की ईंट है ना, तेरी नजर ना पड़ जाए। कह रहे मेरी नजर, पर आपने अपना समय क्यों खराब किया, मिट्टी में और सोने में क्या फर्क होता है। तो मतलब बांका जो थी, हाँ हरी बोल, बांका का जो रियलाइजेशन था वो उसके हस्बैंड से भी ऊपर का था, है ना। तो उसने बोला आप क्यों दबाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मिट्टी में और सोने में कोई फर्क है क्या। तो उसने कहा आपने दबाकर आपने खामा का अपना समय बर्बाद किया, चलिए भजन करते हैं, आज का दिन तो खराब हो गया, और फिर आज हम फास्ट करेंगे, क्यों, आज हमारी सोने से टक्कर हो गई है, गोल्ड टकरा गया, इसलिए वी विल फास्ट टुडे। हाँ पूरा दिन आज हम क्या करेंगे, बिना खाए पिए रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो इस तरह से लक्ष्मण सेन चाहते थे कि वो एक चंपा हाटी नाम का एक स्थान है मायापुर में, जो लोग परिक्रमा करते हैं वहाँ चंपक फ्लावर्स हैं, चंपक फूल हैं, तो उस स्थान में उनके लिए कुटिया बनाए, कहा कि आप हमारे राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं तो आपके लिए कुटिया बना दी, आप यहाँ बैठ के भजन करिए। तो उससे पहले वो जगन्नाथपुरी में चले गए थे केंदुबुल से, जगन्नाथपुरी में पुरी के मंदिर के पास में ही वो बैठकर सार्वम भट्टाचार्य का जो घर है उसके पास में बैठ के भजन किया करते थे। सार्वम भट्टाचार्य तो बाद में आए, लेकिन सार्वम भट्टाचार्य तो बाद में आए लेकिन उससे पहले जो थे वो भगवान वहां पर, ये जो जयदेव गोस्वामी थे ये रहते थे उस स्थान में, और 10 अवतार स्रोत की रचना करी। तो जब लक्ष्मण सेन ने उनके लिए चंपाहाटी में एक स्थान बनाया तो वहां रहते और वहां भजन किया करते। एक दिन उन्होंने देखा कि उस स्थान पे उनके पास राधा माधव विग्रह थे। हाँ कौन से विग्रह थे, कहाँ है, आपने देखे हैं कभी, कहाँ, हरी बोल। और ये जो राधा माधव विग्रह हैं, उन्होंने देखा राधा माधव के दर्शन और आरती और पूजा करते 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 दोनों जुड़ गए, और जुड़ने से क्या बना, गौरांगा 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 गौरांगा। तो उन्होंने कहा गौर उनको दर्शन हुआ। तो गौर का अर्थ अगर देखें, गौ मतलब गोविंद और रा मतलब राधा, तो गोविंद और राधा जब जुड़ जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, गौर बन जाते हैं, गौरांगा, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन। तो उन्होंने इतना सुंदर रूप देखा, जयदेव गोस्वामी ने कहा ओ कितने सुंदर भगवान है, ये माधव इतने गोरे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल राधा रानी जैसा रंग है इनका। तो महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ समय में आने वाला हूँ। तो 300 साल बाद आए उनके इस दर्शन के, लेकिन तब से जो है उनको भगवान के विग्रहों का, भगवान का चेतन महाप्रभु के प्रकट होने का सब कुछ ज्ञात हो चुका था। तो इस तरह के जो राधा माधव भगवान ने दर्शन दिए जयदेव गोस्वामी को। जयदेव गोस्वामी थे, इनका विवाह कैसे हुआ, तो एक बार एक ब्राह्मण थे जिनके घर में कोई पुत्री नहीं थी, तो वो जगन्नाथपुरी आए और आकर उन्होंने प्रार्थना करी जगन्नाथ भगवान से कि जगन्नाथ भगवान एक थोड़ी सी एक हेल्प करिए ना, मेरे घर में बच्चे नहीं है, थोड़ी सी बच्चे के लिए हेल्प करिए ना। तो जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारे घर बच्चा होगा। तो जो बेटी हुई उनके घर में, वो बेटी जो थी बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद में माँ बाप की टेंशन होती, शादी कैसे होगी, शादी हो जाती है तो फिर क्यों हो गई। तो इस तरह से टेंशन में हम लोग अपना जीवन गुजार देते हैं। तो उसने बोला कि भगवान अब मैं पुत्री की शादी कहाँ करूँ। तो जगन्नाथ ने कहा एक ब्रह्मचारी है, सब कुछ त्याग करके घर परिवार सोना चांदी भजन करने बैठा है, तो इसको पकड़ा दो। तो जब हो सकता है भगवान ऐसा ही चाहते थे। तो एक्चुअली गृहस्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है विवाह होना, विवाह प्रॉब्लम होता है उसके लिए जो गृह मेधी होता है। जो व्यक्ति ग्रस्त है, जो कथा कीर्तन भगवान के दर्शन लीलाओं में हमेशा अपना जीवन गुजारता है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ग्रस्त है, अर्जुन ग्रस्त है, परीक्षित महाराज ग्रस्त है। तो एक से एक हमारे आचार्य परंपराओं में हमने देखा है, और जितने भी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी ग्रस्त परिवारों से निकल करके इतने बड़े गोस्वामी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है वही अच्छी भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई एम नॉट प्रीचिंग आश्रम, आई एम प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं कृष्ण भावना मोहित का प्रचार कर रहा हूँ, आश्रम का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। किसी भी आश्रम में रहे, हाँ, ग्रह था के बना था के सदा हरि, हाँ, वान प्रस्ताद हो या कुछ भी हो, एनीबॉडी एनीवेयर, जो भी रहे, जहां पर भी रहे, सदा कृष्ण भावना भवित रहे। अगर वो थोड़ा सा भी भौतिकता में जुड़ा हुआ है और ये कहकर बचना चाहता है मैं गृहस्थ हूँ, तो गड़बड़ है। गृहस्थ हो या कुछ भी हो, आपके मन में सदा बस कृष्ण भावना भक्ति ही होना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी रक्षा, घर चलाना, ये सब भगवान करेंगे। हम जब चलाने पे आ जाते हैं, अरे प्रभु जी मैं भजन करूंगा तो घर कौन चलाएगा, तो एक्चुअली हमारे अंदर अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः। तीनों गुणों में काम हो रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं हम करता है। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी ने कहा, ओहो हो, मैं तो फंस जाऊंगा तुमसे विवाह करके, मैं नहीं शादी कर सकता। उनके माँ बाप ने कहा, हमें पता नहीं, जगन्नाथ जी का ऑर्डर है, छोड़ा। और भैया सर मैं चलता हूँ, ओके सर प्लीज कीप माय डॉटर, ओके आई एम गोइंग वापस। तो बोले, अरे ये तो गले पड़ गई क्या नाम है तुम्हारा? बोली पद्मावती। पद्मावती वहां पर आ गई और पद्मावती के और देख करके वो सोचने लगे, अभी इनसे कैसे विवाह करूं। तो बोले, नहीं नहीं तुम जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ तुमको। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप चले जाएंगे तो मैं आपका नाम लेकर यहाँ कुंड में अपना शरीर त्याग दूंगी, अंतिम संस्कार कर लूंगी आपका। उन्होंने कहा, मैं मरना मरोगी इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, तो मरो मत, मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ, और अपने साथ उनको रख लिया। लेकिन पद्मावती ऐसी थी कि कभी भी अपने पति के कृष्ण भावना भवित होने में उन्होंने कुछ भी मतलब परेशानी नहीं करी। वो अपने आराम से भजन करते थे और वो उनके भजन में डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। कई कई साल बीत जाते थे, वो आपस में चर्चा ही नहीं होती थी उनके कि तुम कौन हो, तुम्हारा बर्थडे कब आया, एनिवर्सरी कब आई, तुम्हारा क्या प्रश्न है। वो अपने शास्त्र रचना करते रहते थे और राधा माधव विग्रह की सेवा करते थे और पद्मावती अपने ध्यान मग्न रहती थी। तो इस तरह से पद्मावती के साथ उनका विवाह हुआ। और जो ये जयदेव गोस्वामी थे, ये केशी घाट पर वृंदावन में राधा माधव भगवान का भजन किया करते थे। तो केशी घाट पे वो रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने जयदेव गोस्वामी का एक सुंदर रचना है जिसको कहते हैं गीत गोविंद, उसको सुने बगैर चैतन्य महाप्रभु सोते ही नहीं थे। चेतन महाप्रभु ने 18 साल जगन्नाथपुरी के गंभीरा स्थान में, जैसे गंभीर होते हैं ना, वेरी वेरी सीरियस स्थान गंभीरा में रहकर महाप्रभु ने रोज, हाँ, चंडीदास नाम के उनके एक भक्त थे, उनको बोलते थे मुझे गीत गोविंद सुनाओ। और आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जब सोते हैं तो गीत गोविंद सुन के सोते हैं। और जब वो जिस चादर को ओढ़ते हैं, जैसे हमने हरि नाम चादर ओढ़ा है, वो ओढ़ते हैं तो किस चादर ओढ़ते हैं, जिस पे गीत गोविंद लिखा हुआ है पूरे चादर पे, है ना। तो इस तरह का जो गीत गोविंद है, भगवान को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोचो भगवान जिस भक्त के लिखी हुई रचना से इतना प्रेम करते हैं, उस भक्त से कितना प्रेम करते होंगे, अत्यंत प्रेम करते थे। तो उनके जीवन का एक रचना आती है कि एक बार वो गीत गोविंद नाम का एक जो ये रचना है इसको लिख रहे थे, और लिखते लिखते उनके घर के पास में गंगा नदी थी। जब वो लिख रहे थे तो उनको ये जो गीत गोविंद है इसके अंदर राधा और कृष्ण के विरह भावना को दर्शाया गया है, सेपरेशन मोड, विप्रलंब भाव, मिलने से ज्यादा अलग रहने में जो भाव है ना, वो साथ में रहने में नहीं। जैसे हम किसी से अगर प्रेम करते हैं तो उसके साथ रहने में वो मजा नहीं, लेकिन अलग रहकर वेट करते रहते हैं कब मिलेंगे, कब देखेंगे, कब मिलेंगे, कब देखेंगे, वो जो भाव है वो ही भगवान के साथ में है ना। जैसे आज माता जी बोल रही थी हमको कि हमें हर महीने आना चाहिए वृंदावन के, इतने सारे विग्रह अगर यहाँ हैं, लेकिन अगर हर महीने हम आएंगे तो फिर हमारा भाव समाप्त हो जाएगा ये विरह। इसीलिए गोस्वामी ने, आचार्यों ने बोला, वृंदावन में आओ 3 दिन से ज्यादा मत ठहरो, ज्यादा मत आओ, बार बार आने से आपको उसकी दिव्यता का एहसास होना खत्म हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर से रोज मिलेंगे तो लेग अपना दोस्त है, अपनी चलती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी ना जानता और गली से निकल जाए तो लोग पीछे पीछे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसे ही भगवान के धाम को बहुत सारे भक्तों के साथ निरअपराध होते हुए ही प्रवेश करना चाहिए, और जो घूमने फिरने के भाव से प्रवेश कर जाते हैं उनको फिर बाद में बड़ा अपराध लगते हैं, महाअपराध भी लगते हैं कई बार, और इसी के कारण भक्ति प्रकट नहीं होती जीवन में। हम सोचते हैं अरे हम तो सब जानते हैं, हमें तो 10 साल हो गए, हमें तो 20 साल हो गए हैं, 10 साल 20 साल कुछ नहीं करेगा। भक्तों के संग, जैसे अभी राजकुमार प्रभु मेरे को कह रहे थे, बोले प्रभु जी आई कैन नॉट स्टे अलोन, ये बहुत अच्छा गुण है एक भक्त का, उसे कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। कोई अगर अकेले रह रहा है इसका मतलब वो अभी बहुत दूर है भक्ति से, अकेले नहीं रहना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति प्रेषक स्वामी महाराज अपने रूम के दरवाजे खोलकर सोते हैं। तो भक्तों ने पूछा क्यों महाराज आप खोल के सोते हैं, कह रहे ताकि मेरे डिसाइपल्स मुझे नजर से देखते रहे और उनकी नजरों में मैं रहूंगा तो मेरी भक्ति सस्टेनेबल रहेगी, मैं डर के रहूंगा कि मेरे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं अपना आचरण बचा के रखूंगा, अगर पता चलेगा मैं तो गुरु बन गया हूं, अब किसी को क्या पता मैं जो करूं वही सही है, और छुप के कमरे में कुछ भी करूं इनको क्या पता, भगवान को तो पता है। तो इसीलिए अगर हम अपनी भक्ति बचाना चाहते हैं तो भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। तो जो सेपरेशन भाव है उसको गीत गोविंद में दर्शाया गया, तो वो लिख रहे थे एक बार देही पद पल्लव उद्धारम, उन्होंने एक अपने मन में चिंतन किया कि राधा रानी ने अपने चरण उठाकर कृष्ण के मस्तक पर रख दिए हैं। हाँ ये भाव है कि तुम इतनी देर से आए, मैं मान कर रही थी आयो चलो सरेंडर नाउ, तुम बोलते हो ना सर्वधर्मान परित्याजम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमने बोला शरणागत करो, अब मैं बोलती हूँ क्योंकि तुम हो मदन मोहन और मैं हूँ मदन मोहन मोहिनी, तो अब करो सरेंडर मुझे। हाँ तो ये भाव उनके मन में आया था और उन्होंने देखा पर लगा ओहो हो कृष्ण तो परम ब्रह्म ईश्वरम परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादेरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। अब कृष्ण जो ब्रह्मांड नायक है उनके सर पर राधा रानी का पांव रखवा दूं तो फिर लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, राधा रानी को मानेंगे परम ब्रह्म। तो इस कारण से उन्होंने कहा नहीं 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 लिखूंगा। और फिर बेचारे सोचने लगे कि अरे बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो जब हम डिप्रेस होते हैं तो सोचते हैं स्नान करना चाहिए उससे शुद्धि हो जाती है। तो ये सच में एक बहुत अच्छा रूल है, जब आपका माइंड बिल्कुल अपसेट हो भक्ति नहीं हो रही हो तो ज्यादा स्नान करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी गंगा में रोज, जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे 3 बार स्नान करते थे और उन्होंने नियम बनाया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों को 3 बार स्नान करना चाहिए। इस्कॉन के भक्तों के लिए तो फेमस है, गमछा हमेशा लेके तैयार रहते हैं, जहां पानी मिले स्नान कर लेते हैं। तो इस्कॉन के भक्त बहुत नहाते हैं, नहाना चाहिए स्नान करना चाहिए। तो जो जयदेव गोस्वामी थे वो सोचे स्नान करके आता हूं तो मन शांत हो जाएगा। तो जब स्नान करने के लिए गए तो थोड़ी देर बाद पद्मावती को बोले कि तुम प्रसाद बना के तैयार रहो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ फिर लिखूंगा अपनी रचना को। तो इतनी देर में क्या देखते हैं पद्मावती कि अभी गए थे और अभी वापिस आ गए। आइए आइए स्वामी आइए बैठिए, स्नान कराए, हाँ प्रसाद दू, हाँ दे दो प्रसाद पाया, मेरी पुस्तक निकालना, तो उनकी पुस्तकें निकाली, उन्होंने ताम्र पत्र उठाया, अपनी कमल उठाया और डंडी से लिखने लगे। लिखा उन्होंने देही पद पल्लव उद्धारम एज इट इज लिख दिया, और बोले हाँ सही है लिख देना चाहिए, और फिर बोले मैं जरा आता हूँ घूम के। और जब घूमने गए वो देखा थोड़ी देर बाद फिर पानी से भीगे हुए शरीर पे फिर एक व्यक्ति वही जयदेव गोस्वामी आ रहे हैं, कह रहे पद्मावती पद्मावती प्रसाद दो बहुत भूख लगी है। कह रहे स्वामी आज क्या हो गया, डबल डाइट ले रहे हो, एक बार ले लिए उसके बाद दोबारा मांग रहे हो, हाँ क्या हुआ आज प्रॉब्लम है, जयपुर यात्रियों के साथ आए हो क्या, भूखा रखा हुआ है सुबह से खिलाया नहीं है। तो उन्होंने बोले कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं कब आया हूँ, मैंने कब प्रसाद लिया, अभी तो प्रसाद खा के गए हो, अभी तो प्रसाद खा के गए हो, क्या मैं कब प्रसाद खा के गया, अच्छा तुम बेकार बातें छोड़ो, अरे अभी कैसी बेकार बातें छोड़ो, अभी आपने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद हस्त प्रक्षालन किया, मुंह धोया, हाथ धोए और उसके बाद में आपने अपनी पुस्तक उठाकर उसमें वही चर्चा करनी चाह रहे थे जो आपने पूर्ण किया अपनी रचना को। मैंने लाओ 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 जल्दी से ताम्रपत्र उठाकर देखा तो क्या देखा, उसमें जो वो सोच रहे थे वो उसमें लिखा हुआ था। तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम भाव विभोर होकर रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा और अपनी पत्नी पद्मावती के चरण पकड़ लिए और बोले पद्मावती यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने किसके हाथों के अपने अपने घर में प्रवेश कराया, किसके चरणों को अपने घर में प्रवेश कराया, स्वयं माधव को, कृष्ण को, जिसको प्रसाद खिलाया तुम्हारे हाथों से, किसने प्रसाद खाया, भगवान स्वयं माधव ने खाया, यही माधव जो आपने अभी उनके दर्शन किए। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है प्लास्टिक की मूर्ति, ओ माय फ्रेंड गणेशा तुम रहना साथ हमेशा, वो नहीं है, ये राधा माधव है, ये भगवान है, साक्षात विराजमान है इस स्थान को। अभी वो सुन रहे हैं सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ की जो गोपियां हैं, यहाँ की जो सखियां हैं, सब सुन रही हैं कि यहाँ पर हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये सारे भक्त जो है इन सबको हमें भक्ति प्रदान करनी है, सब सोच रहे हैं। पद्मावती के चरण पकड़ लिए और कहा, पद्मावती अब तुम अपने चरण मेरे मस्तक पे रख दो, जैसे राधा रानी ने कृष्ण के मस्तक पे रखे। तो वो रहने लगी, स्वामी क्या कर रहे हैं, एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति के चरणों के नीचे रहे, ना कि चरणों के नीचे रखे। आजकल अलग हो गया सिस्टम, लेकिन वैसे सिस्टम ये है कि पत्नी जो है वो चरणों में रहे पति के, तो पति के चरणों में रहना चाहिए, उसकी सेविका बनकर, सेवक बनकर। तो इस तरह से उन्होंने कहा, और अपने अगले रचना की शुरुआत में लिखा उन्होंने, जयति पद्मावती, पद्मावती तुम्हारी जय हो, और हमेशा के लिए लिख दिया पद्मावती, अब तुम्हें लोग इस लीला रचना के गीत गोविंद के नाम से हर रोज स्मरण करेंगे, तुम्हारा मुझसे ज्यादा लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे। तो लोग जयदेव गोस्वामी का नाम का स्मरण नहीं करते हैं, जब गीत गोविंद बोलते हैं तो उसमें जयति पद्मावती, जयति पद्मावती, जयति पद्मावती, हर रचना की शुरुआत में जयति पद्मावती आता है। तो आप सोचिए पद्मावती की जय बोला जाता है बार 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 बार। तो कोई भी भक्त देखिए, पद्मावती भक्त नहीं थी, सोलह माला जब भी नहीं कर रही थी, चार पाप नियम का मालूम नहीं, लेकिन वो क्या कर रही थी, एक कार्य कर रही थी, अपने पति जो उनके भक्त थे उनकी पूर्ण रूप से सेवा कर रही थी। तो वैष्णवों की सेवा करने से भी कृपा मिलती है। हाँ, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है हम सबके अंदर, लेकिन एक क्वालिटी है, हम सब ने शीला प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करी है। शीला प्रभुपाद जी अगर भगवत धाम है तो हमारी गारंटी है कि वो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं, हमें भगवान प्रदान कर सकते हैं। हरी हरी वाह। ऐसे जयदेव गोस्वामी जो है वो यहाँ पर विराजमान विग्रह जो राधा गोविंद है इनका हमने दर्शन किया, और जयदेव गोस्वामी की एक और रचना बताकर बस हम समाप्त करेंगे, रात्रि बहुत हो गई है। तो जयदेव गोस्वामी जो है वो गंगा नदी के किनारे जब रहते थे तो उनका स्नान करने का नियम था, रोज स्नान करने जाते थे। एक दिन वो बीमार हो गए और स्नान करने नहीं जा सके, तो सोचिए गंगा नदी ने कहा, आज वैष्णव नहीं आए जयदेव गोस्वामी मेरा शुद्धिकरण करने। गंगा में लोग स्नान करने जाते हैं हरिद्वार, दौड़ दौड़ के जाते हैं हरिद्वार, हर हर गंगे क्यों करने जाते हैं, हमारा शुद्धि हो, पाप खत्म हो। लेकिन गंगा नदी पूछती है गंगा देवी भगवान से कि भगवान मैं आपके चरणों से निकलने वाली विष्णुपदी हूं, अगर सब मुझ में अपने पाप धोएंगे तो मैं कहां धोऊंगी। हाँ भाई, जैसे हम काउंसलिंग करते इतने सारे लोगों के, हम गुरु महाराज को जाके बोलते महाराज सो मैनी पीपल टेल सो मैनी प्रॉब्लम वेयर शुड आई शेयर माय प्रॉब्लम, तो महाराज कहते यू कम टू मी। तो ऐसे ही भगवान जो है उनसे बोली गंगा मैया कि भाई मैं कहाँ अपने पाप धो। तो उन्होंने कहा जब भक्त तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे स्नान करने के लिए तो वो शुद्ध होने के लिए नहीं आएंगे, उनके हरिनाम की शक्ति इतनी होगी कि तुम शुद्ध हो जाओगी। तो भक्त जब स्नान करने जाते हैं तो वो खुद शुद्ध नहीं होते हैं, वो स्थान को शुद्ध करने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे महाकुंभ में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, महाकुंभ में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि उस कुंभ में ऐसे बहुत सारे तपस्वी सन्यासी होते हैं जो कि मायावादी होते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो वो गंगा में स्नान करने के कारण नीचे निकल आते हैं, और जब वो वहां आते हैं तो फिर वहां पर हम उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरि नाम प्रदान करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और उनको सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, तो कंपैशन की जो भावना है वहां पूर्ण हो सकती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए भक्तों को कुंभ में जाना चाहिए, अपने शुद्धिकरण के लिए नहीं। भक्तों का शुद्धिकरण तो उसी दिन हो जाता है जब वो भगवान के नामों का जप करते हैं, है ना। कहते हैं दर्शन पवित्र करे ऐ तुमार गुण, गंगा रे परस होवे पाश्चात पावन। गंगा का स्पर्श होने के बाद में पावन होते हैं, लेकिन भक्तों के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, उनमें स्नान नहीं करना पड़ता। तो इसलिए भक्तों के संग में जो लोग रहते हैं और ये भक्तों की कथाओं के संग जो रहते हैं उनको गंगा नदी में स्नान करके शुद्धि ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो हम अगर हरिद्वार या कुंभ जाए भी तो अपने स्नान के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए, दूसरों को हरिनाम प्रदान करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक बार एक व्यक्ति आए थे, उनका पास टाइम बताकर समाप्त करते हैं, और उन्होंने पीएचडी किया हुआ था, पीएचडी है ना, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, और उन्होंने पीएचडी किया था किसके ऊपर, गीत गोविंद के ऊपर। तो गीत गोविंद के ऊपर फिलॉसफी पे खूब एकदम एक्सपर्ट थे, अपनी पत्नी के साथ आए और एक जगह महाराज लेक्चर दे रहे थे, उनका नाम है राधानाथ स्वामी महाराज। तो महाराज लेक्चर दे रहे थे तो ऐसे जैसे ये यहाँ पर सब भक्त बैठे हैं उदास, कब खत्म होगा प्रवचन, तो ऐसे ही वो भी वहां बैठे थे और इतने में एक आदमी आकर बोलने लगा बीच में, यू पीपल टॉक दिस एंड दैट, यू आर रेडिकुलस पीपल, आपको कुछ नहीं पता, शोर शराबा करते हो, कुछ नहीं मालूम, यू नो आई एम PhD इन गीता गोविंद, मैं गीत गोविंद में क्या किया हूँ, PhD किया हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने कहा आप लोगों को मालूम है ये जो आप कृष्ण कृष्ण करते हो ना, कृष्ण इज अ रास्कल बॉय, कृष्ण क्या है, रसिक भक्त है, ही इज अ लस्टी मैन, वो तो कामुक आदमी है जो कि इतनी सारी औरतों और लड़कियों के पीछे जाता है, वो कोई भगवान है, गीत गोविंद पे मैंने PhD किया है, मैं जानता हूँ कृष्ण क्या है। तो महाराधानाथ स्वामी महाराज बोलने लगे, मैंने उस व्यक्ति से पूछा तुम जानते हो, देहो आस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र नामुयते, तुमने तो PhD किया, इस श्लोक का अर्थ बताओ। बोला ये तो नहीं मालूम। तो गीता के सेकंड चैप्टर का श्लोक है। तो महाराज महाराज बोले, मैंने उसको बोला कम से कम गीता तो पढ़ लेते, गीत गोविंद PhD कर लिया लेकिन 10th पास नहीं थे, बाद में पता चला 10th में फेल हुआ था नकली किसी कॉलेज से, 10वीं 12वीं फेल, PhD करे वहां से PhD कर लिया उसने। हाँ तो ऐसे कोई फायदा नहीं है जिसने गीता नहीं पढ़ी, जिसने ये समझा नहीं कि हम सब कौन है, हम सब आत्मा है और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होती है, लेकिन कृष्ण का शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर सच्चित आनंद का बना हुआ है, वो आनंद के सागर है, ऐसे भगवान के लिए वो कुछ भी बोलते हैं लोग। तो राधानाथ महाराज ने ना पे क्रोध किया ना कुछ किया और उसको बस ये बोला कि तुम गीता पढ़ो तब तुम्हें गीत गोविंद असलियत में समझ में आएगा, योर PhD इज वेस्ट श्रम एव ही केवलम, सारा समय तुमने बर्बाद कर दिया PhD करने में। और फिर इतने में उसकी पत्नी बोलने लगी, चलो ना कहाँ सर घुमार रहे हो, ये तो पागल है, सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, ये नहीं समझेंगे। तो महाराज बोले छोड़ो उसका हाथ और यहाँ दंडवत करो, बोलो सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब कुछ छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तब तुम असलियत में गीत गोविंद में PhD कर पाओगे, अन्यथा गीत गोविंद में तुम्हारी PhD वेस्ट हो जाएगी और अपना शरीर त्यागने के बाद तुम नर्क जाओगे जबकि तुमने गीत गोविंद के ऊपर PhD किया है। तो इसलिए गीत गोविंद पढ़ना, धामों में प्रवेश करना या फिर डायरेक्ट हम बुक्स लेके पढ़ना चाहे हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसको सिर्फ किसी और भक्त की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भाई 10 रुपए तो वो देगा ना जिसकी पॉकेट में 10 रुपए होंगे, आप मुझे आए बोले प्रभु जी 10 रुपए देना, जैसे आज सब जब वहां पे आए थे आश्रम में बोल रहे थे ताला दो ताला दो, मेरे पास 10 ताले थे तब तक तो दिया लेकिन जब नहीं था तो हम नहीं दे पाए। तो जिसके पास कृष्ण नहीं है वो आपको कृष्ण कैसे देगा, तो हम किसी से भी पूछ ले जाते हैं या फिर लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी को छोड़ते हैं गाइड पकड़ लेते हैं, यहाँ जो गाइड है वो थोड़ा जल महल हवा महल और भी घुमा देगा हमको, और प्रभु जी तो एक एक स्थान पे 1.5 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं, अब फायदा क्या इनके साथ रहने का, पूरा जयपुर का दिन खराब कर दिया, इतना पैसा खर्च करके आए। तो लेकिन वो गाइड आपको कृष्ण नहीं दे सकता, हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए नहीं, किस लिए आए हैं, जब हम दिल्ली में कथा सुनते हैं तो हमारे मस्तक में एक माइंड में बात घूमती है कि घर जाना है, घर पे कोई आ ना गया हो, अभी तो पता है ताला डाल के आए, जो आएगा आएगा। तो इसलिए यहाँ एब्जॉर्ब होकर पूरा ध्यान मग्न होकर कथाओं को अपने हृदय में हम घुसा सकते हैं, इसीलिए ऐसे स्थानों पर ज्यादा ज्यादा लंबी लंबी कथाएं होनी चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कथा चलती रहे, कोई भी एक कोना पकड़ लो वहां बैठ जाओ, सारे भक्त कीर्तन करें कथा करें प्रसाद पाएं फिर कीर्तन फिर कथा फिर प्रसाद, बस घूमेंगे क्या, आंखों से क्या दर्शन कर पाएंगे, कुछ दर्शन नहीं होगा आंखों से, क्या देखते हैं, क्या इतनी बार देखते हैं भगवान को, बता नहीं सकते नाम क्या है, कहाँ के भगवान है, कौन से गोस्वामी थे, कौन से क्या थे, सुनते हैं सब निकल जाता है, ये तो हृदय में कृष्ण आ जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है, ज्ञान आए ना आए भक्ति आ जाए हमारे जीवन में, तो हम ज्ञानी नहीं बनने आए, हम क्या बनने आए, तो भक्त के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है श्लोक याद है कथा याद है नहीं है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण से कितना प्रेम वो करते हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण से प्रेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग में रहकर कथा श्रवण करें और विनम्रता पूर्वक, जो भक्ति है उसका बीज विनम्रता में ही उगता है, तो विनम्रता के साथ ही हम चले और सीक्वेंस में जैसे हमने प्लान किया है तो ट्राई करें। मुश्किल होता है किसी के शेल्टर में रहकर, बंधन में रहकर कार्य करना, क्योंकि हम सब आजाद पंछी हैं, वांट टू फ्लाई, निकल के बाहर भागना चाहते हैं, ग्रेस्प करना चाहते हैं, चीजें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पतंग जो धागे से जुड़ी रहती है वो हमेशा ऊपर रहती है। जो धागा तोड़कर पतंग चलती है वो नीचे जाती है। तो इसलिए बंधन में रहना मुश्किल है, लेकिन आज हम भजन गा रहे थे बस में, मौसम पतिता प्रभु ना पाई बेयार। और ये पतित जो होता है, तिलक लगा के धोती कुर्ता पहनकर तुरंत एकदम एक्सपर्ट गाइड बन जाता है, पतित खत्म हो जाता है। तो पतित असलियत में हमें फील भी करना चाहिए। भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग, रियलाइजेशन, साक्षात्कार। बार बार इस पे चिंतन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए कि हम हैं पतित, हम हैं भगवान के दास। गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास। आसान है श्लोक, हमने भी रटा आपने भी, लेकिन दास कोई नहीं मानता। हम बोले प्रभु जी इधर शाह, रात को 10 बजे तक बैठना है। थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा मच्छर काट रहे प्रभु जी, आपको नहीं काटते हमें तो काटते हैं, चलो ना, क्या कर रहे हो। नहीं होता, बहुत मुश्किल है बंधन में इंस्ट्रक्शन को पालन करना। तो वो बताए फेल होंगे बार बार, एक बार फेल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे, तो ट्राई टू रिपीट इट अगेन अगेन। एक बार फेल हुए फिर ट्राई करो, इस बार नहीं फेल होगा, फिर ट्राई करो, अब इस बार नहीं होगा। एक ना एक समय होगा जब हम फेल होना बंद हो जाएंगे और इनफेलेबल लॉर्ड अच्युत भगवान के भक्त बन पाएंगे, है ना। वो इनफेलेबल है, लेकिन हम फेलेबल है, हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हम च्युत हैं और भगवान अच्युत है, अच्युत भगवान है। तो हमें भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए। तो कल हम जाएंगे सुबह, अभी वापस आश्रम जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद में हम लोग जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह कल मंगला आरती करेंगे अपने आश्रम में 4:30 बजे। और उसके बाद 5:30 बजे हम करौली के लिए निकलेंगे। करौली में जाकर मदन मोहन जी के बारे में अनेकों लीलाएं, सनातन गोस्वामी जो उनके आचार्य हैं, जिनके वो विग्रह हैं, उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र को पूरा सुनेंगे आराम से बैठ के, 1.5-2 घंटा आराम से कथा करेंगे। वापिस आकर इस्कॉन टेम्पल गिरधारी दाऊजी मंदिर जाएंगे और रात्रि का प्रसाद मिड डे मील किचन में लेंगे वहां पर जाके। तो इस तरह का कल का प्लान है और फिर कल की शाम को आपको परसों का प्लान बता देंगे। हरे कृष्णा। बताइए ना, अभी आपके लिए प्रभु जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, एक पास टाइम बताइए ना।
42 मिनट है।
हाँ तो
अभी 10 मिनट।
नहीं नहीं आप बताइए ना, मेरे को याद नहीं।
ठीक है, बोलिए ना।
नहीं ठीक है, बोलो। ठीक है, बोलो बोलो। कोई नहीं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में क्यों घर में।
एक सेकंड रुकिए।
ये जो राधा माधव जी का आपने दर्शन किया, तो एक बार जयदेव गोस्वामी, आप लोग गांव के जो है वो जानते होंगे, जब झोपड़ी बनता है घर, फूस का जो घास साइक्लोन का जो बनता है, तो एक बार क्या हुआ, जब ऊपर वो जयदेव गोस्वामी ऊपर बैठे थे, छत के ऊपर वो छाप रहे थे, बना रहे थे अपने झोपड़ी, और पद्मावती माता जी अपना भोजन बना रही थी। लेकिन ये जो माधव जी का आपने दर्शन दिया, देखे आपने राधा माधव जी, तो ये स्वयं ऊपर से वो रस्सी डालते थे और नीचे से राधा माधव जी उनको रस्सी पकड़ाते थे, और इस प्रकार उनका घर तैयार हुआ। तो जब देखते पद्मावती तुम कहाँ हो, तो मैं यही हूँ, रस्सी पकड़ा रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। तो ये है राधा माधव जी का एक लीला है, मैं शॉर्टकट में बता दिया, वैसे प्रभु जी डिटेल से बताते। तो ये है राधा माधव जी जो स्वयं भक्तों की घर बनाने में भी सहयोग करते हैं।
हरी बोल,
हरी बोल,
जय
श्री कृष्ण प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की
जय।
मंगल आरती के लिए कहां इकट्ठे होंगे?
हरे कृष्णा। मंगल आरती के लिए कल 7वें नंबर फ्लोर पे अपने आश्रम के, 7th फ्लोर पे जहाँ प्रसाद लिया था वहीं पे हम इकट्ठे होंगे सब लोग।
मायापुर में अपने स्थान थे, वहां था भजन में कुटीर में हुआ करते थे ना।
हां
मृदंगम में, क्या बोलते हैं, जयदेव गोस्वामी मायापुरी, मायापुर के
चंपा घाटी
वहां राधा माधव थे, अपने वृंदावन केसी घाट में भी थे।
चंपा घाटी से जब वो वृंदावन आए जयदेव गोस्वामी, तो चंपा घाटी से चल करके वो राधा गोविंद को, राधा माधव को अपने साथ वृंदावन ले आए। लेकिन कुछ समय बाद उनको जब इच्छा नहीं हुई तो वो वृंदावन त्याग करके वापस चले गए मायापुर, लेकिन राधा माधव वहीं पर रह गए। और जब औरंगजेब ने वहां पर आक्रमण किया 450 साल पहले, तो राधा माधव भगवान को वहां से केशी घाट से उठाकर इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया।